ताई को जब आस्तिक के परिवार में हुई घटना के बारे में पता चला तो वो यहाँ आए बिना रह नहीं पाई। लेकिन वो यहाँ रहने नहीं आई थी, बल्कि आस्तिक को समझाने आई थी। आस्तिक मुश्किल से खुद को संभालता है और अपनी ताई के सामने खड़े होते हुए कहता है, ये क्या कह रही है ताई, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो सब कुछ सही किया है ना, जो हमारे साथ हुआ है वो कौन सा सही था? मैंने तो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया है। तुमने अपने साथ हुए अन्याय का बदला एक ऐसी लड़की से लिया जिसका इस अन्याय से कोई लेना देना नहीं था। ताई ने जब ये कहा तो आस्तिक हैरानी से उन्हें देखता रह गया। आस्तिक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, कैसे लेना देना नहीं है, वो शारदा देवी की बेटी है। उस डायन की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया था। मेरी माँ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई थी। हम सब ने भीख मांगकर जिंदगी बिताई है। क्या मैं ऐसी परवरिश का हकदार था या मेरे भाई बहन ऐसी परवरिश के हकदार थे? नहीं ताई, हम सबको भी हक था एक घर मिलने का, माँ बाप का प्यार मिलने का, एक परिवार मिलने का। लेकिन उस डायन की वजह से मेरा सारा परिवार बिखर गया था। उस औरत को वही मिला है जो उसने हमें दिया है। जैसे उसकी वजह से मेरी माँ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुई थी, वैसे ही अब उसकी बेटी भी दर दर की ठोकरें खाएगी। जैसे हम लोगों ने अपना बचपन सड़कों पर बिना बाप के नाम के बिताया था, वैसे ही अरुणिमा का बच्चा भी बिना बाप के बढ़ेगा। तो क्या फर्क है तुम में और तुम्हारे बाप में? ताई के ये कहने पर आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से में ताई को देखते हुए कहता है, ताई खबरदार, जो मेरी तुलना उस कमीने इंसान से की तो मैं उसके जैसा कमीना नहीं हूँ। ताई के चेहरे पर एक व्यंग्य सी मुस्कान आ जाती है और वो आस्तिक को देखते हुए कहती है, हाँ तुम उसके जैसे नहीं हो, बल्कि तुम तो उससे भी दो कदम आगे निकले। पर जहाँ से मैं देख पा रही हूँ आस्तिक, तुम यहाँ से मुझे तुम्हारे बाप जैसे ही नजर आ रहे हो, जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था और उस बेसहारा औरत का इस पूरी दुनिया में कोई ठिकाना नहीं था। उसी तरीके से तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया है। तुम बिना बाप के सड़कों पर रहे हो, तुमने भी अपने बच्चों को बिना बाप के सड़कों पर ही रहने पर मजबूर कर दिया है। जहाँ से मैं देख पा रही हूँ आस्तिक रायचंद, तुम में और तुम्हारे बाप में कोई फर्क नहीं है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि तुम्हारे अंदर सीमा का खून है और सीमा एक पवित्र आत्मा थी, लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारे अंदर तो उस कमीने अभय का खून निकला और खून तो अपना रंग दिखाएगा ही। ताई के ऐसा कहने पर आस्तिक का पूरा चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो पास में पड़ी बोतल को उठाता है और उसे अपने हाथ पर मार देता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। आस्तिक जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं उस कमीने का बेटा नहीं हूँ, मेरे अंदर उस कमीने का खून नहीं है। न जाने कितनी देर तक आस्तिक इसी तरीके से पागलों की तरह चिल्लाता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब जमीन पर बैठा बैठा बेहोश हो गया था। ताई ने एक नौकर की मदद से आस्तिक को उठाया और उसे कमरे में ले गए थे। ताई ने आस्तिक के हाथों पर पट्टी बांधी और उसके उस हताश भरे चेहरे को देखकर कहने लगी, तुमने गलत किया है मेरे बच्चे, बस तुम्हें उस गलती का एहसास हो जाए। वहीं दूसरी तरफ रजत के घर में, ज्योति वापस अपने हॉस्टल चली गई थी क्योंकि ये उसका लास्ट ईयर था। रजत इस वक्त अपने स्टडी रूम में था और एक फाइल को ढूंढ रहा था। दरअसल ये वही फाइल है जो रजत ने आस्तिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए बनाई थी, लेकिन अब वो फाइल मिल नहीं रही थी। रजत ने उसे बहुत सीक्रेट तरीके से लॉकर में रखा था, पर अब वो फाइल लॉकर से गायब थी। रजत परेशान हो गया था, उसे वो फाइल चाहिए थी क्योंकि आज वो फाइल पुलिस डिपार्टमेंट में सबमिट होनी थी और पुलिस को आस्तिक के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत मिलने वाला था। पर अब जब वो फाइल नहीं मिल पा रही है तो रजत को टेंशन होने लगी थी। तभी उसे याद आता है कि कीर्ति के यहाँ आने का मकसद क्या था। कीर्ति भी तो इसलिए रजत से शादी करके इस घर में आई थी ताकि आस्तिक के खिलाफ इकट्ठा किए गए सारे सबूत को वो नष्ट कर सके। रजत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, यानी कि जो आस्तिक ने किया उसके बाद भी कीर्ति आस्तिक को बचाने की कोशिश कर रही है। रजत का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर जाता है। वो तेजी से स्टडी रूम से निकलकर कमरे की तरफ आता है, पर तभी वो हैरान रह जाता है। कीर्ति ने आज साड़ी पहनी हुई थी, हालांकि वो नॉर्मली घर में साड़ियां सूट नहीं पहनती थी, बल्कि वो तो ट्राउजर टॉप जीन्स कुछ भी पहन लिया करती थी, पर इस तरीके से कभी वो तैयार नहीं होती थी। कीर्ति ने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी और अपने मांग में सिंदूर भी लगाया हुआ था। रजत से शादी करने के बाद उसने कभी सिंदूर या चूड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया था। गले में मंगलसूत्र पहनती थी, लेकिन वो भी कपड़ों के अंदर छुपा के रखती थी ताकि किसी को उसकी शादी के बारे में पता न चले। पर आज कीर्ति बहुत अलग तरीके से रजत के सामने आई थी। रजत कीर्ति को देखकर हैरान हो गया था। कीर्ति रजत के पास आते हुए कहती है, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं बनाना आता है, पर मैंने इंटरनेट से देखकर पोहा बनाना सीखा है। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है ना, तुम तैयार हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता तैयार करती हूँ। कीर्ति वहाँ से आगे बढ़ ही रही थी कि रजत ने कहा, कीर्ति मेरी फाइल तुम्हारे बैग में रखी है। कीर्ति ने रजत की बात को पूरा होने से पहले ही उसे कह दिया था। रजत हैरानी से कीर्ति को देखने लगा और उससे कहता है, इसका मतलब वो फाइल तुमने लॉकर से निकाली थी? कीर्ति ने हाँ में सर हिलाया। उसने झूठ नहीं कहा और रजत से सच सच कह दिया कि हाँ, उसी ने फाइल निकाली थी। कीर्ति ने रजत को देखते हुए कहा, हाँ मैंने ही वो फाइल निकाली थी और उसे पढ़ा भी है। दरअसल मैं बस ये जानना चाहती थी कि भाई ने और क्या क्या गलत काम किए हैं। रजत कीर्ति से कहता है, तो फाइल मिलने के बाद तुमने उसे पढ़ा क्यों, जला क्यों नहीं दिया? तुम जानती हो ना, अगर मैंने वो फाइल पुलिस तक पहुंचा दी तो तुम्हारे भाई को सजा हो सकती है। कीर्ति के चेहरे पर एक मायूसी भरी मुस्कान थी और उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि भाई को सजा हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने उस फाइल को कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि भाई की सजा अरुणिमा की सजा से बहुत कम है। अरुणिमा को एक बार फिर से याद करने के बाद कीर्ति की आंखों से आंसू बह निकले थे और रजत जल्दी से आगे बढ़कर कीर्ति को अपने गले से लगा लेता है और उसके माथे को सहलाने लगता है।